ये सबसे पहले मैं बात करूंगा तब्दीली की, कि तब्दीली आएगी। एक जो आपके कैबिनेट में मैं चेहरे देख रहा हूं, वो वही पुराने चेहरे हैं, वही पुराने तौर अतवार हैं। आप किस तरह से तब्दीली लाने का प्लान कर रहे हैं?
मैं इसको एक तब्दीली, ये एक बजवर्ड बन गया है, एक सियासी जमात ने तब्दीली तब्दीली की बात की, नया पाकिस्तान की बात की। मैं उस हिसाब से इसको नहीं देख रहा हूँ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक फैसला किया कि जो है चीफ मिनिस्टर चेंज किया जाए, और एक प्लान, एक प्रोग्राम दिया है कि जी हमने इलेक्शंस लीडिंग टू द इलेक्शंस ऑफ 2018 सिंध में मिसाली काम करना है। तो वो उस हिसाब से तब्दीली तो ये इस तरीके से नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का यही प्रोग्राम होता है कि वो जो है लोगों के लिए की खिदमत करें और तरक्की के लिए और अमन अमान के लिए एक पॉलिसी दी जाती है। तो उसी पॉलिसी पे मैं चल रहा हूँ जो पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी है। आपने कैबिनेट का जिक्र किया, कैबिनेट जो मैंने चूज की है उसमें हमने एक मिक्स लिया है, पुराने मेंबर्स भी हैं, सीनियर मेंबर्स भी हैं और कुछ नए मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बारिंग वन और टू, पोर्टफोलियो सबके चेंज किए हैं एक दो के अलावा, और उसकी वजह यही थी कि हम चाह रहे थे कि जो है वेरिएड किस्म के एक नए जज्बे के साथ काबीना के अफराद जो है, काबीना के मेंबर्स, वो इस मिशन पे कि जी हमने मिसाली काम करके दिखाना है, वो आगे चले।
अच्छा, अभी एक बात बताइए कि जब जहां तक रेंजर्स का ताल्लुक है, आपने उनको एक्सटेंशन दिया है, कराची के हद तक उनको कार्रवाइयां करने का अख्तियार दिया है, सिंध के अंदर उनको रहने का अख्तियार दिया है, तो ये क्या दो अमली नहीं है? रेंजर्स कार्रवाई कर सकते हैं कराची में, तो अंदरूनी सिंध क्यों नहीं कर सकते?
देखिए, एक तो सबसे पहले कराची भी सिंध का हिस्सा है, तो कराची है तो सिंध के ये हिस्से में ही है। तो मतलब ये कहना कि कराची में दिया हुआ और सिंध में नहीं दिया हुआ, मैं उससे थोड़ा सा ही ना रिजर्वेशन स्टेटमेंट पे। लेकिन इसके बैकग्राउंड ये है कि 1989 से पाकिस्तान रेंजर्स आर्टिकल 147 के तहत सिंध में इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस काम कर रही है, और ये 89 से आज 27 साल हो गए। हर साल उनका एक एक साल के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया जाता है जो एक चल रहा है आर्टिकल 147। 2013 में सितंबर के अंदर कराची टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ, और उस कराची टारगेटेड ऑपरेशन के तहत एक चीज और जो दी गई, हमारे पास एंटी टेररिज्म एक्ट है जो 1997 का है। उस एक्ट में प्रोविजन है कि कोई सूबाई हुकूमत एक फेडरल एजेंसी को, जिसमें आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज पे रेंजर्स आते हैं, पुलिसिंग पावर्स दे सकती है इन एनी एरिया, और वो था ही फॉर कराची बिकॉज उसका नाम ही कराची टारगेटेड ऑपरेशन था। दहशतगर्दी का प्रॉब्लम कराची में था, तो वो कराची के लिए इन सितंबर 2013 रेंजर्स को पुलिसिंग पावर्स अंडर दी एंटी टेररिज्म एक्ट दे दिए गए, और वो भी 3 या 4 महीने के लिए दिए जाते हैं और वो एक्सटेंड होते चले जाते हैं। इसके अंदर कराची से बाहर अगर रेंजर्स ने कार्रवाई करनी है, उसके तरीकेकार मौजूद है, एक एसओपी मौजूद है, और ऐसे कोई इसमें प्रॉब्लम है। रेंजर्स ने बहुत सारी अरेस्ट की है रूरल एरियाज में कराची से बाहर, बाकी सिंध में, बट दे हैव ऑलवेज बीन इन कोऑर्डिनेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस, तो उनको कोई रोकता नहीं है। द ओनली थिंग इज कि दे हैव टू, जब वो उनकी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता है तो उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चलना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं ना, अगर सिंध पुलिस को कोई शख्स मतलूब हो जो लाहौर में मौजूद है, तो सिंध पुलिस खुद जाके तो वहां छापे मार के नहीं ले सकती, वो लोकल पुलिस जो लाहौर की है उसकी असिस्टेंस से एक टीम जाती है और उस बंदे को अरेस्ट भी करती है, अप्रीहेंड भी करती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब ये ऑपरेशन ही कराची टारगेट ऑपरेशन है एंड इट वॉज बिकॉज द टेररिज्म प्रॉब्लम इन कराची वॉज देयर जिसकी वजह से शुरू हुआ था, तो रेंजर्स को ये पावर्स कराची डिवीजन में दिए गए।
अच्छा, मेरा यही सवाल है आपसे, मुझे 2 या 3 प्रायोरिटीज आपकी होंगी यकीनन, जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने का, वो क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी एक ही है कि किसी भी हर शोबे में आवाम की खिदमत करना। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप पूछे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कदरे बेहतर है पहले से कराची के अंदर भी, सिंध के बाकी अजला में भी, उसमें और बेहतरी लाना। जो सोशल सेक्टर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ, उसमें मैंने दोनों सीनियर वजरा, मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ताकि वो अपनी सीनियोरिटी اور اپنے ایکسپیرینس کا استعمال کر کے ان دونوں امپورٹنٹ سوشل سیکٹرز میں کوئی نئی چینج لا سکے. میں نے جلد سے جلد گورننس میں کچھ تبدیلیاں لانی ہے کہ میں جو ایک کہا کہ جی رائٹ مین فور دا رائٹ جاب, یہ کوشش میری ہوگی کہ جلد سے جلد بیوروکریسی میں ایسی چینجز لائی جائیں, اور وہ چینجز لانگ لاسٹنگ ہو. ایک بار وہ چینجز ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹرم جو ہماری ہے باقی 2018 تک وہی افسران رہیں تاکہ اس پالیسی پہ عمل درآمد کر سکیں. اس میں تھوڑا سا پرابلم مجھے یہ ہے کہ 24 تاریخ کو لوکل گورنمنٹ الیکشن کا آخری فیز ہونا ہے اور 24 اگست تک ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹرانسفر پوسٹنگ کا منع کیا ہوا ہے. وہ 24 کے بعد بھی یہ لارج اسکیل پہ ہوگا, تب تک سر میں پریپیئر بھی کر رہا ہوں اس کے لیے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس سے ہم ایک ڈائریکشن کی طرف ضرور جائیں گے, اس ڈائریکشن کی طرف جس میں لوگوں کو ایک بہتر گورننس کا جو طریقہ کار نظر آئے گا, لوگوں کو سروس ڈلیوری بہتر ملے گی اور لوگوں کے مسائل حل ہوں گے.